لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. موجودہ زمانہ یا ہمارا جو کرنٹ ٹائم پیریڈ ہے، اس کا بہت بڑا پرابلم گھمنڈ، غرور، ایروگینس، تکبر اور دعا انسان کو بہت ہی ہمبل بناتی ہے اور اس میں عاجزی پیدا کرتی. یہ جملہ تھا جس پہ ہماری کل رات کی مجلس ختم ہوئی تھی، اور اسی سے آج کی مجلس کو آگے بڑھانا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن یہ دے دی جائے کہ مجالس، اس کا اپنا ایک الگ سبجیکٹ اور ٹاپک ہوتا، مسائل فقہ بالکل ایک الگ فورم ہے، اس کے سوال بھی وہیں پوچھے جائیں. مجلس میں اگر مسائل کا تذکرہ ہو جائے تو پھر بات بہت لمبی ہو جاتی. ہاں، یہ کسی نے ریکویسٹ کی تو میں خیال کروں گا، آئندہ اس کا خیال کیا جائے گا، یا تو کوئی مسئلہ بتایا ہی نہ جائے، اور یا پھر اگر مسئلہ بتایا جائے تو جس کی تقلید میں میجوریٹی ہے پبلک کی، ان کا مسئلہ بھی بتایا جائے. کل بہت جلدی جلدی صرف یہ بتاتے ہوئے کہ آیت اللہ خوئی نے بالش، اب چھوٹی انگلی نہیں، یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی، اس کے درمیان یہ بیچ کی انگلی، یہ بالش عورت اور مرد کی نماز کا ڈسٹنس قرار دیا. اگر دونوں پیرلل ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سیپریشن، کوئی کرٹن، کوئی وال نہیں. سوال یہ آیا کہ مجمع کی میجوریٹی آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہے، آیت اللہ خوئی کی تقلید میں نہیں. چونکہ جو ایج گروپ میرے سامنے بیٹھتا، تو میرے ذہن میں یہ کنسپٹ تھا کہ یہ لوگ آیت اللہ خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں گے، اور آیت اللہ سیستانی والے جو ہمارے بچے اور نوجوان ہیں، وہ شیخ بلال کے لیکچر میں اس وقت بیٹھے ہوں گے. یہ میرے ذہن میں یہ کنسپٹ تھا. اور چونکہ آنے والی مجالس میں، ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس میں بھی ایک مسئلہ آ جائے اور آنے والی مجالس میں دو تین مسئلے آئیں گے، تو اچھا ہوا کہ ٹائم پر یہ وضاحت ہو گئی کہ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا تو جو آپ کی میجوریٹی تقلید کر رہی ہے اس کا بھی خیال کیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ پھر آپ نے آیت اللہ خوئی کا نام لیا، تو آیت اللہ سیستانی کا نظریہ کیا؟ آیت اللہ سیستانی اس مسئلے میں شیور نہیں. مرجے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن وہ امام معصوم نہیں ہے اور اس کی نالج کمپلیٹ نہیں ہے. کئی مسائل میں وہ 80 سال کی ریسرچ کے بعد بھی، ہم اور آپ تو 80 سیکنڈ 80 سیکنڈ بھی ریسرچ نہیں کرتے، جو زبان پہ آیا کہہ دیا، لیکن 80 سال کی ریسرچ کے بعد بھی کئی مسئلوں کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حدیثیں بلکہ ایون قرآن کی آیتیں، اس کے اتنے زیادہ انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں کہ اس میں میں کوئی ڈیفینیٹ اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں. وہاں پہ وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، احتیاط واجب. گرچہ آلدو یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے احتیاط واجب کا، مثلا اس سال یہی ابھی دو مہینے پہلے جتنے لوگ اس سال حج پر گئے تھے، انہوں نے اپنا حج بچایا کیسے؟ आयतुल्ला सिस्तानी का जो मून साइटिंग का हज में भी नजरिया है, जितनी उनकी तकलीद में थे ऑलमोस्ट सब के हज इस साल या गलत हो जाते और या फिर ये कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बर्दाश्त करना पड़ता कि सारा आलम इस्लाम जब हज कर चुका उसके बाद वो एक दिन डिले चलते। यही एहतियात वाजिब के मसले की वजह से तो इस साल सबने अपना हज बचा लिया। चूंकि अभी जो हाजी हैं उनको अच्छी तरह से ये मसाला याद है, इस साल मक्के में सबसे ज्यादा जो फतवा डिस्कस हुआ वो यही था, क्योंकि पूरा हज गलत हो रहा था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पे एक बात कह के अपने असल मौजू पे आता हूं, और वो ये है, नहजुल बलागा में मौला ने खारिजियों को इस्लाम का सबसे बदतरीन और पहला टेररिस्ट ग्रुप, जब मौला ने खारजियों को कंडेम किया है तो जो खारजी आर्गुमेंट करते थे वो ये था कि ला हकम इल्लल्ला, हकम जो है या हुक्म जो है सिर्फ अल्लाह का चलेगा। मौला ने कहा कलिमत हक युरादो बेहल बातिल, ये बात जो कह रहे हैं ये हक बात है, कौन इसमें शक कर सकता है कि अल्लाह के अलावा किसी और का हक फैसला चले या अल्लाह के अलावा कोई और हकम यानी जज या काजी बने, मगर कलिमा इनका हक है, जो बात कह रहे हैं ये सच है, युरादो बेहल बातिल इनका इंटेंशन बातिल है। अब ये जो मौला ने खारिजियों के लिए कहा, ये सिर्फ खारिजियों के लिए नहीं, आज कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो तौहीद तौहीद का तस्किरा करके ये दुआए तवसुल जो अभी अभी आपने पढ़ी है इसको भी शिर्क करार देते हैं। मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा ये किसी से नहीं कह सकते कि या वजीयन इंद अल्लाह इखवालना इंद अल्लाह। अल्लाह का सिस्टम दुनियावी हुकूमतों का नहीं है, बल्कि आज तो दुनिया की भी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर भी कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। तौहीद 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 कलिमा तो हक, बात सही है, जो रादो भी हल बात करें इंटेंशन उनकी गलत है। नादी अली पे इतने एतराज आजकल हो रहे हैं, खैर तो बात बहुत ज्यादा फैल जाएगी और वीक डेज की मजलिस में इसकी जरूरत नहीं। उसी तरह से आजकल एक फितना और खड़ा हुआ, उसका नाम है तबईज। एक वक्त में कई मराजे की तकलीद, अब इसके ऊपर अलग से बात होगी क्योंकि बहुत अहम मसला। ये एहतियात वाजिब के मसले में जिसकी वजह से हमारा हज बचा, जिसकी वजह से आयतुल्ला सिस्तानी वाला भी फ्रेंच कट दाढ़ी रख पाया, जिसकी वजह से औरत और मर्द की नमाज में डिस्टेंस का वो मसला न रहा, सैकड़ों एग्जाम्पल है जहां जहां आयतुल्ला सिस्तानी ने एहतियात वाजिब इस्तेमाल की वहां दूसरे मर्जे की बात मानी जा सकती। सिंसियर मुखलिस मोमिन जो तबीज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते, वहां शैतान ने उनको इस तरह से बहका के एहतियात वाजिब के मसले में गुमराह कर दिया। बस इसके बाद बातें बाद में होंगी, आज नहीं। ये भी जो कल एक मसला आ गया तो खुलासा उसका यह था कि आयतुल्ला सिस्तानी के नजदीक औरत और मर्द की नमाज में कम से कम 5 मीटर या 5 यार्ड का फासला होना चाहिए अगर एक जगह पढ़ रहे हैं और पैरेलल खड़े, सिवाय एक्सेप्शन है ड्यूरिंग हज और उमरा जब रश बहुत ज्यादा हो जाए तब किसी डिस्टेंस की जरूरत नहीं। अब ये तो कल के मसले की एक वजाहत थी, आधा मसला आ गया तो आधा भी आना चाहिए था, लेकिन बात जो हो रही वो ये है तकब्बुर गुरूर। दुआ इसका एक इलाज है, इसकी एक रेमेडी है। अगर आदमी दुआ के तर्जुमे पे गौर करे तो किस तरह से आदमी को डाउन टू अर्थ पहुंचाया जा रहा है और उसको हम्बल बनाया जा रहा, आजिजी सिखाई जा रही, आदमी के जहन से वो चीजें निकले जो उसको एरोगेंस या घुमंड की जानिब ले जाती। मगर इसी मौके पे कुरान ने दुआ के लिए भी ये कहा, दुआ इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि समटाइम्स दुआ की अहमियत नमाज से भी ज्यादा हो जाती है। यानी नऊज़ु बिल्लाह इसका मकसद वाजिब नमाज नहीं है भाई, अभी हज की बात आ रही है ना, अराफात के मैदान ये ऑर्डर है कि नहीं कि नमाजें शॉर्ट पढ़ो, क्यों, जोहर असर की, सारी नहीं जोहर असर की, वाह ताकि जो टाइम आपका बचे वो दुआ में लगाओ, अरफात का दिन दुआ का दिन। अब अगर हम शॉर्ट नमाज पढ़ेंगे तो कितना टाइम हम बचा लेंगे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। कहा कि अरफात का दिन ऐसा है कि एक एक सेकंड दुआ के लिए नमाजों तक को शॉर्ट करा दिया गया। और जब ये पूछा गया इमाम से कि सबसे अच्छी नमाज कौन सी है, कहा जिसका कुनूत सबसे बड़ा होता। कुनूत क्या है? दुआ। हालत नमाज में कुनूत ही तो वो जगह जिसके बारे में उलमा जो आजकल एक जुमला मेंबर से पढ़ते हैं वो 100% अगर सही है तो कुनूत के बारे में। एक जुमला आपने रमजान में बहुत सुना होगा, रमजान में ये कहा जाता है कि आदमी कहता कि अगर कभी मेरा दिल ये चाहे, मेरे मन में ये ख्वाहिश आए कि अल्लाह मुझसे बातें करे, अल्लाह अल्लाह, मैं कुरान खोल लेता हूं, कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान क्या है? अल्लाह से बात कर रहा हूं। और अगर कभी मेरा ये दिल चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज शुरू कर देता हूं। नमाज क्या है? मोमिन अल्लाह से बातें कर रहा। तो नमाज में कुनूत वो स्टेज जहां पे वाकान आप डायरेक्ट अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। सुन्नत नमाजों में तो आप अपनी अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा, गुजराती और उर्दू और फ्रेंच और जिसमें दिल चाहे दुआ मांग सकते हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। इजाजत
आज 9 बजे आप
ऊपर। अरे क्यों, आज क्यों 9 बजे? वकील हजरत आयतुल्लाह उज़्मा गैस सिस्तानी हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, हुज्जतुल इस्लाम मुर्तजा कश्मीरी साहब, एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दुरूद भेजे। तो दुआ में कुनूत और खास तौर पर सुन्नत नमाज अगर है तो आप अपनी अपनी जबान के अंदर भी कुनूत पढ़ सकते हैं, यानी अल्लाह से बातें कर सकते हैं। और कुरान ने कहा कि अगर कोई आदमी इतना एरोगेंट है, ये लफ्ज आया इन्ना लजीना यस तकबिरून, जो लोग इतना तकबुर से, गुरूर से, घुमंड से भरे हुए कि इबादती, मेरी इबादत, यहां पे तफसीर है यानी दुआ, मेरी दुआ, मेरी बारगाह में दुआ के लिए भी तैयार नहीं, इतना उनमें गुरूर, अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे, अल्लाह से भी क्यों मांगे। सैयद खुलूना जहन्नम दाखिरी, ये लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे और खाली जहन्नम में नहीं, जलील करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। गुरूर का मतलब आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है ना। अल्लाह के रसूल की वो हदीस जिसमें पैगंबर ने फतूना फ्वाजा, मैं कयामत के दिन लोग एक साथ नहीं आएंगे, ग्रुप ग्रुप में आएंगे, फौज फौज, ग्रुप ग्रुप, गुरोह दर गुरोह। एक हदीस है पैगंबर की, जब महाज इब्ने जबल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कौन से ग्रुप होंगे, तो पैगंबर ने 10 बताए। कुछ लोग कुत्ते की शक्ल में आएंगे और कुछ खंजीर की शक्ल में आएंगे, मुख्तलिफ। तो कहा कि एक ग्रुप ऐसा है जो चींटी की शक्ल में आएगा, चींटी, सबसे छोटा जानवर, नजर भी नहीं आता आदमी को चलते वक्त, और इन्हें मैदान कयामत में लाके जमीन पर फेंक दिया जाएगा। ये ओरिजिनल, ये एक्चुअल चूंटियां नहीं, ये वो इंसान है जिन्हें कब्रों से चूंटी की शक्ल में इसलिए भेजा गया। कहा कि ये दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, तकब्बुर, गुरूर, देखते भी नहीं थे किसी आम मोमिन को, सलाम का जवाब भी नहीं देते थे अपने गुरूर की वजह से। कयामत में इतना जलील कल के आया जाएगा, चूंटी बना के कयामत के मैदान में फेंक दिया गया, सारा कयामत का मजमा या क्राउड इनके ऊपर से गुजरेगा, नजर ही नहीं आएंगे ये लोग। और जब चूंटी पर से आपका पैर या बूट गुजरे, वो किस तरह से टूट जाती है, इस तरह से ये लोग कयामत के दिन तोड़े जाएंगे। क्यों? बहुत गुरूर था माल पर, बहुत पैसा, बहुत गुरूर था अपने बिजनेस पर, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा, बहुत गुरूर था अपनी ताकत पर। अब हर आदमी के पास कहीं ना कहीं कोई थोड़ी अथॉरिटी होती है, कोई किसी ऑफिस का मैनेजर है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन है, कोई किसी मुल्क का हाकिम है, ताकत। बहुत गुरूर था अपने कबीले और खानदान के ऊपर, مختلف طرح کے غرور ہوتے ہیں نا، کہا کہ جتنا یہاں بڑا سمجھ رہے اتنا قیامت میں تمہیں چھوٹا کیا جائے گا. آخری زمانے کا یہ مسئلہ تو میں نے کل بتایا، آج ذرا سا تقریر کا سیکوینس بنانے کے لیے کچھ باتیں ریپیٹ نہیں ہوئی، مزید ذرا سی اور وہی باتیں دوسرے اسٹائل سے آ گئی. مگر یاد رکھی کہ روایتوں میں تین اور بہت خطرناک قسمیں بتائی گئی ہیں غرور کی، تکبر، گھمنڈ، ایروگینس. ایک ہے علم پر غرور، کوئی صاحب علم ہے، صاحب علم کو پھر ہمبل ہونا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، لیکن ایک قسم یہ آتی ہے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے سمجھتا. عوام کی ذمہ داری ہے صاحب علم کو پوری رسپیکٹ دے. ایک عالم اپنی قوم میں ایسا ہے، یہ حدیث، جیسے کوئی نبی اپنی امت میں ہوتا، اور اس عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علم میں تکبر و غرور نہ کرے. ایک علم، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پوری تاریخ شیعہ میں اپنے عظیم عظیم بڑے بڑے مراجع کو دیکھا، سو ہمبل، سو ڈاؤن ٹو ارتھ، جو ڈیزرو کرتے تھے اگر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، کبھی نہیں سمجھا. اور آج دو چار اچھی اسپیچز کسی کو آ گئی، انگلش کی یا اردو کی بہت اچھی ویکیبلری ہو گئی اور بہت اچھا اسٹائل ہو گیا، ذرا دیکھیے گا اس آدمی کے ایروگنس کی حالت. وہ خالی یہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں ممبر پہ آیا، لوگ میرے سامنے زمین پہ بیٹھے، واقعا یہ سمجھے گا جیسے وہ عرش الہی پر بیٹھا ہوا، یہ سب اس کے سامنے بہت ہی انفیریئر قسم کے مومنین بیٹھے ہوئے. تو یہ ہم نے اپنے بڑے بڑے مراجع کو بھی دیکھا، تو کتنے ہمبل تھے، خالی پاس میں نہیں، پریزنٹ میں بھی. اور پھر یہ بھی دیکھا. خیر، تو یہ آپ یہ موضوع نہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے کہ بجائے اس کے کہ جو میسج ہے اس کو سمجھنے کے، اسے بھی علماء کی توہین کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. کلمۃ حق یراد بہا الباطل، حق بات بھی کہی جائے تو کبھی دشمن اس سے باطل انڈیشن کر. ایک دوسری چیز، یعنی غرور کسی چیز پر بھی ہو، ایروگنس، گھمن، غلط ہے، لیکن دوسری چیز عبادت. وہ عبادت کر کے آتے ہیں تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، سارے لوگ جو ان کے سامنے یہ حقیر ہیں، یہ ذلیل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تک پر احسان رکھتے ہیں اپنی عبادت کا، ذرا ان کے گھر میں کوئی پرابلم آ گیا، ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اب اللہ سے کمپلین یہ ہوتی ہے کہ فلاں شرابی اور فاسق و فاجر، اسے تو یہ مل رہا ہے اور میں نماز شب پڑھنے والا، اور تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اللہ کو اللہ سمجھ کے بات کرنا پھر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن غرور ان کا اتنا ہوتا ہے، ابو جہل جیسا غرور لگتا ہے جو کل واقعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. عبادت کا غرور، اقرار کی اعمال کیے اس کے. شیخ سعدی کا ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں. شیخ سعدی ہمارے ایک بہت بڑے ریفارمر تھے، گلستان ایک کتاب لکھی ہے انسان کے نفس کی پیورٹی کے لیے، بہت ہی چھوٹا سا واقعہ. گھر کے یہ جو اسٹوری ہے یہ زیادہ تر پڑھی جاتی ہے دو رات پہلے کا جو ٹاپک تھا غیبت کے حوالے سے، لیکن چونکہ جو ایکچول جملہ ہے اس غیبت سے زیادہ اس کے اندر ایروگنس پایا جاتا. شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ٹریولنگ پہ گیا، پرانے زمانے کی ٹریولنگ. آج تو بہت آسان ہے، بزنس کلاس، فرسٹ کلاس، پریمیم، اکنامی، جس میں بھی آپ جائیے آرام سے پہنچ جاتے ہیں. پرانے زمانے کا سفر بہت ٹف ہوتا تھا، سارا دن ٹریولنگ ہوتی تھی تو آدمی اتنا تھک جاتا تھا کہ بس شام کو اترا گھوڑے سے، کھانا کھایا، نماز پڑھی، یا پہلے نماز پڑھی پھر کھانا کھایا، اب جو سویا تو فجر کی نماز کے لیے بھی مشکل سے اٹھے گا. شیخ سعدی کو ان کے والد نے شروع سے ہی ٹرین کیا تھا، یہ ابھی ان کا بچپنا ہے، یا بچپنے سے مطلب یہ ہے کہ ہوں گے 14-15 ایج کے اعتبار سے، 14 سال 15 سال ایسی ایج ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ ٹریولنگ میں تھے ہم لوگ بہت تھک گئے، لیکن کیونکہ ساری زندگی کی ہیبٹ تھی تو جیسے ہی نماز شب کا ٹائم آیا میری آنکھ کھل گئی. مسافر کے لیے نماز شب پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کے ایکچول ٹائم پر، اسی لیے مسافر کے لیے اکثر مراجع کے پاس نماز شب ایڈوانس میں بھی پڑھی جا سکتی. یہ الگ بات ہے کہ حضرت آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں تو نماز عشاء کے بعد ہی نماز شب کا وقت آ جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں کروں گا تو ایک گھنٹے کی مجلس تین گھنٹے کی بن جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ نماز شب کا جو ایکچوئل ٹائم فجر سے کچھ پہلے، اتنی تھکن ہوتی ہے. لیکن شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ والد نے ساری زندگی مجھے ہیبٹ دلوائی تھی، چنانچہ میری آنکھ آٹومیٹک کھل گئی. باڈی کا کلاک جو ہے نا، یہ دنیا کا سب سے بہتر کلاک ہے، بخالی اس کو یوز کرنا آدمی آنا چاہیے. آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو نماز شب، ابھی فجر کا وقت نہیں آیا، نماز شب کا وقت ہے، میں نے نماز شب پڑھ لی. اور بہترین نماز ہے نماز شب، جس میں ایک مزہ، فَأَسَى رَبُّكَ يَبْأَسَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. قرآن نماز شب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ نماز شب پڑھو، اللہ مقام محمود تمہیں عطا کرے گا. بہترین نماز ہے نماز شب، اور بہت ہی اس کا شارٹ اور سمپل طریقہ بھی اسلام نے دیا. بہرحال وہ ایک طرف رکھیے، نماز شب پڑھ لی. اب نماز شب پڑھی تو دیکھا میرے والد مجھ سے پہلے سے اٹھے ہوئے اور وہ نماز پڑھ کے تلاوت قرآن کر رہے ہیں. یوزول طریقہ ہے صاحبان ایمان کا کہ ایک رکوع تھوڑا سا قرآن، ایک حزب، ایک پارا صبح کے وقت پڑھتے. انہوں نے سب کو دیکھا، باقی سارا قافلہ سو رہا. دوران حج تو یہ چند ایسے ٹف ٹائم آتے ہیں کہ جہاں واجب نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتی. حج میں لوگوں سے نماز شب بہت زیادہ چھوٹ جاتی. تو اب انہوں نے دیکھا، شیخ سعدی نے، سب لوگ سو رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ بابا یہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں، یہ کیسے غافل لوگ ہیں، اتنی بہترین نماز کا وقت آیا اور ان کو نیند زیادہ پیاری ہے، سب پڑھے سو رہے ہیں، ایک آدمی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا. باپ نے کہا بیٹا کتنا اچھا ہوتا کہ آج تو بھی سوتا رہتا اور آج تو نماز شب کے لیے نہیں اٹھتا. باپ نے کہا بیٹا گھبرا گیا، چکرا گیا، حیران ہو گیا. یہ آج کا باپ تو ہے نہیں جو اپنے بیٹے کو داڑھی شیو کرنا سکھاتا، یہ آج کی ماں تو ہے نہیں جو اپنی بیٹی کو بے حجابی کا سبق سکھاتی ہے، یہ آج کے پیرنٹس تو ہے نہیں جو اپنے بیٹے کو مس گیدرنگ میوزک والی اس میں لے جایا کرتے ہیں. میرا بابا جس نے ساری زندگی مجھے ٹرین کیا کہ نماز شب پڑھنا. ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ایک دفعہ پہلے بھی ایک جملہ میں نے کہا تھا، بھائی معصومین کے حوالے سے تو یہ بات کرنا ہی ایک قسم کی نان سینس ہے کہ امام کیسے بنے، ہم کیسے امام بن سکتے ہیں. لیکن مرجع کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں نا، وہ تو ایک عام گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ تو امتی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ تو کسی معصوم گھر میں پیدا نہیں ہوئے نا، ان کے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آخر وہ اتنے بڑے بلند مقام پر کہ نائب امام قرار پائے ہیں وہ کیسے پہنچ جاتے ہیں. تو کچھ کامن باتیں مجھے نظر آئیں میجورٹی آف مراجع کے حالات میں، کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نے دیکھا تمام مراجع مرجع بننے کے بعد نہیں، شروع سے ہی اپنی جوانی سے اس کو فالو کر رہے تھے. تو اللہ نے اتنا ہائی سٹیٹس دیا، اس میں ایک زیارت عاشورہ اور ایک نماز شب. نماز شب تو سب سے زیادہ اہم، بہت بلندیاں انسان کو دیتی ہے اسی دنیا کے اندر. اور کسی مجلس میں ذرا اور ڈیٹیل آئے گا. آج ایک بہت اہم اسٹوری بھی مجھے پڑھنا ہے شارٹ کر کے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز شب آدمی کو اتنا اونچا کرتی ہے، اور شیخ سعدی کے والد کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے مراجع خود اور اپنی اولاد کو ٹریننگ دلواتے ہیں. شیخ سعدی نے گھبرا کے کہا بابا یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہا نماز شب کا بڑا ثواب، بڑی فضیلت، بہت ہائی اسٹیٹس، سب کچھ صحیح، لیکن ہے تو نہ سنت نماز. اور مومن کی غیبت کرنا اور اس کی برائی کرنا یہ ہے پہلے حرام. ایسے سنت کام کا فائدہ کیا کہ سنت کر کے فوراً حرام شروع کر دیا. جب پیغمبر اسلام نے مسجد النبوی وہ ممبر سے کہا کہ اگر کوئی آدمی ذکر خدا کرتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو تسبیح ہے شہزادی کی، فوراً اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت پیدا کرتا خاص اس کے لیے اسپیشل. تو کسی نے مجمع میں سے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو جنت میں کتنے ہمارے درخت ہوں گے، میں تو روزانہ 100 مرتبہ یا 500 مرتبہ ذکر خدا کرتا ہوں. ڈیلی اگر 100 درخت آپ کو ملے تو ایک سال میں ہی کتنے ہو جائیں گے، اور 10 سال میں؟ پیغمبر نے کہا بے شک یہ ملیں گے، लेकिन एक कंडीशन है, यहां से आग भेज के अपने दरख्तों को जला ना दे। वहां दरख्त पैदा होता रहा, उसके बाद आप आग भेज के अपने दरख्तों को जलाते रहे। ये गीबत आग है, ये तोहमत आग है, ये एरोगेंस आग है। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, कामयाब है वो मोमिन जो अपनी नमाजों में तवज्जो से काम लेते हैं। आखिरी आयत इस सीक्वेंस की क्या, وهم على صلواتهم يحافظون, ये नमाजें पढ़ के अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। चीज बनाना जितना अहम है, उसकी मेंटेनेंस भी इतनी ही ज्यादा अहम हुआ करती है। नमाजें शब पढ़ के 500 पाउंड कमाए और गीबत करके 1000 पाउंड की पेनल्टी अपने आप पे वाजिब करवा ली, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो अब ये जो एरोगेंस की एक किस्म होती, हमने नमाजें शब पढ़ी है, सब लोग, पूछिए आप उन लोगों से जो काफिलों में हज पर जाते हैं, जो काफिलों में जियारत पे जाते हैं, अगर हमें एक इबादत का चांस मिला जो दूसरे लोग नहीं कर सके, एक तो होता है अमरे बिल मारूफ, बहुत ही तरीके से और कायदे से और सलीके से दूसरे तक नेकी का पैगाम पहुंचाना, एक वो स्टाइल होता है जिसमें ये लगता है कि हमें सुपीरियर, ये है इंफीरियर, अपनी अपने उस नेक अमल पर मसलन ये पैदल जियारत है, बहुत से लोग नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के पास ताकत है लेकिन बहरहाल वाजिब नहीं है, इसलिए वो नहीं करते। जो पैदल जियारत करके जो 3 दिन के बाद करबला पहुंचते, डर लगता है कि वो अपनी जियारत के सारे सवाब को जाय ना कर दे। तो ये जो आमाल पर गुरूर होता है, इल्म और आमाल, और इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसका खाली आज बयान शुरू होगा, ये मुकम्मल कल होगी। ये बहुत अजीब लफ्ज मैं कहने जा रहा हूं, बहुत अजीब लफ्ज, और इसको जरा समझाना पड़ेगा। तो चूंकि आज की मजलिस में अब जो स्टोरी आने वाली, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं रहेगा इस पॉइंट को पूरा एलोबरेट करने का, तो इंशाल्लाह कल, क्योंकि ये वीकडेज की मजलिसें 3 जो है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, मोर और लेस इसमें मजमा एक जैसा ही रहेगा। तो जो आज लोग हैं वो कल भी होंगे। हाँ, मुझे यकीन भी है कि शब जुमा और शब अरबईन ज्यादा लोग आएंगे, और जैसा कि अभी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुर्तजा कश्मीरी साहब ने दरियाफ किया कि मैं जुमेरात को तशरीफ लाए थे, 9 बजे मजलिस शुरू हुई थी, तो जुमेरात को तो मजलिस जरा लेट शुरू होती है, बाकी तो भाई जो हमारा टाइम है। तो खुलासा यह है कि बहुत जल्दी बात खत्म करना है। तीसरा गुरूर, देखिए, माल, औलाद, खानदान, कबीला, बिजनेस, ताकत, और सबका जवाब दुआ, सबका सलूशन, मगर ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कल भी कह चुका हूं, आज इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, मगर इल्म, मगर तकवा, और तीसरी कैटेगरी है एरोगेंस की बड़ी खतरनाक जो आजकल, और वो है गुनाहों पे गुरूर। गुनाहों पे गुरूर, गुनाह क्या चीज है जिसकी वजह से आदमी गुरूर करे, ये सुनिएगा आप कल, पहले एक बात वाजे हो जाए। और वो ये कि गुनाह की 2 किस्में, वैसे तो बहुत सारी गुनाह की बहुत सारी कैटेगरीज, अलग अलग एंगल से कुछ ऐसे गुनाह हैं कि आप खाली अल्लाह से तौबा कर लें वो गुनाह माफ, जैसे शराब, शराब, जैसे बेहिजाबी, एक बार गुनाह किया, एक बार नहीं 50 साल गुनाह किया, और एक बार आपने तौबा कर ली, पूरा गुनाह माफ। लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं कि आपका गुनाह खाली तौबा से माफ नहीं है, जैसे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1 फजर की नमाज आपसे कजा होगी, उसने 50 साल शराब पी, आपने सिर्फ 1 नमाज कजा की और अल्लाह से कहा कि ये मैंने गलत किया, लेकिन ये 2 रकत नमाज आपको पढ़ना पड़ेगी। तो अब कुछ गुनाह ऐसे हैं कि खाली दिल में आपके निदामत हुई, आपको शर्मिंदगी हुई, आपने अल्लाह की बारगाह में अपोलॉजी मांगी, गुनाह माफ, चाहे वो 50 साल का गुनाह। और कुछ ऐसे हैं कि 5 मिनट का गुनाह है लेकिन खाली तौबा से माफ नहीं, कुछ ना कुछ उसका कंपन, जैसे एक ही है। कुछ ऐसे गुनाह कि अल्लाह से आपने कहा माफ कर दे, माफ हो गया। कुछ ऐसे गुनाह है कि खाली अल्लाह से नहीं, उस इंसान से भी आपको माफी मांगना है। अब ये मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, इस मजमे में जरूरत भी नहीं। उसी तरह से गुनाह की एक किस्म यह कि आदमी बहुत बहुत बड़ा गुनाह करे लेकिन अपने गुनाह को छुपाए, अपने गुनाह पे पर्दा डाले, ये खुद अल्लाह को बहुत पसंद है। गुनाह तो हो ही जाता है, अपने गुनाह को छुपाओ। और कुछ यह है कि गुनाह आदमी कर रहा है और अपने गुनाह को पब्लिक के सामने लेके आ रहा, वो बहुत बड़ा गुनाह किसी ने किया लेकिन छुपा दिया। एडल्ट्री का गुनाह है और आपको पता चल गया, आपके लिए हराम है उसकी गइबत करना। अरे एक छोटा सा गुनाह है, मसलन दाढ़ी शेव करना, एज कंपेयर टू दैट गुनाह। लफ्ज छोटा लफ्ज बड़ा ये सब कंपेरेटिव लफ्ज, लेकिन दाढ़ी शेव करने का गुनाह ऐसा है कि छुपा नहीं रहे लोगों के सामने, इसमें गइबत तक जायज है ऐसे आदमी की। तो खुलासा यह कि एक ये कैटेगरी आती। तो इस्लाम बहुत ज्यादा ये हुक्म आया कि अगर गुनाह तुमसे हो जाए, अव्वल तो क्यों हो जाए, तो अपने गुनाह को छुपाओ, हत्ता हाकिम शरा को भी ना बताओ। अपने गुनाह का इकरार करना हाकिम शरा के बाद ये वाजिब नहीं है। लेकिन गुनाह जब खुल के किया जाता है, यानी आदमी गुनाह भी करे और पब्लिक के सामने करे। अच्छा, हमारे यहां लोग इसकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे आदमी है जो गुनाह करता है, अपने गुनाह को वो फलां साहब देखा मस्जिद में इतने मुत्तकी बन के आते हैं, कल हमें पब में नजर आ गए थे, हमको देख के छुप गए थे, वो अच्छा काम कर रहे। और ये जो आपके सामने शराब लेके बैठा है, आपने कहा देखिए कितना प्योर और पाक आदमी है, गुनाह कर रहा है लेकिन अपने आप को मुत्तकी नहीं बना रहा, ये डबल गुनाह कर रहा, गुनाह और गुनाह को फैला रहा। अब इस्लाम का स्टार्ट, कल एक बात मैंने आखिरी जमाने के इम्तिहान के लिए कही कि भाई इम्तिहान तो हर दौर के मोमिन का हुआ। अहसब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलकद फतन्ना लजीना मिन क़ब्लिहिम वलनब्लुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफ वलजू से लेके आखिरी आयत हर दौर का। लेकिन मैंने कहा आखिरी जमाने में यह इम्तिहान डबल हो जाएगी। उसी तरह गुनाह, मेरा जुमला असल क्या है, गुनाह पे गुरूर और घुमंड, ये क्या होता। और ये हमारे इस टॉपिक में दुआ और मौजूदा जमाना, उससे इसका क्या ताल्लुक है। शायद ये मैं बात पूरी ना कर पाऊं क्योंकि वाकया, अच्छा वाकया मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, अगर मेरे पास टाइम होता मैं स्पाइसी बना के वाकये को पेश करता, 40 मिनट 45 मिनट का तो ये है वाकया, एक्चुअली ये 40-45 मिनट का। किसी भी मोमिन का ब्लड प्रेशर भी हाई ना हो कि मैं 45 मिनट अब नहीं ले रहा हूं, और मुखी साहब भी मुतमइन रहे कि मैं 45 मिनट नहीं ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सिर्फ जो उसकी मेन थीम है वो आप तक पहुंचाना। और वो ये वो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात है वो बताना। लेकिन जिमना ने छोटी सी बात और कि जब अल्लाह के रसूल ने मक्के में ऐलान रिसालत किया, सूरह अनकबूत मैंने कल बताया कि बिल्कुल शुरू में नाजिल हुआ जिसमें इम्तिहान की बात हुई, जब मक्के में पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया तो एक नई बात थी, इस्लाम एक नई चीज थी। तो बहुत सारे लोग आके एक सवाल करते थे जो करना चाहिए हर एक को, लेकिन बाकी लोग नहीं करते थे, वो अपने बड़ों के इन्फ्लुएंस में थे। लेकिन कुछ लोग थे जो आके कहते थे बट व्हाट इज इस्लाम, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो ये इस्लाम है क्या। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आदमी किसी के इन्फ्लुएंस में होता, वालिदैन के, खानदान के, कबीले के, या अबू जहल जैसे आदमी के, वो ये पूछेगा भी नहीं कि इस्लाम क्या होता है, वो मुखालिफत शुरू करेगा। लेकिन जो समझदार सेंसेबल इंटेलेक्चुअल लोग थे तो पैगंबर हमेशा उसका एक रिप्लाई देते थे मक्के के इस्ते में। और ये वाकया जो है ना, ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर अगर कि ये जुमला जो मैंने कहा इसके बाद मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ सकता हूं, लेकिन इसलिए भी वाकया पढ़ रहा हूं कि इसमें हज और उमरे का एक बहुत अहम मैसेज है, वो कल तो हर सूरत में आप तक पहुंचाना। मदीना, ये बात है मक्के की कि अल्लाह के रसूल मक्के में तबलीग कर रहे हैं और जो आके एक सवाल करे कि व्हाट्स इस्लाम, व्हाट्स योर मैसेज, तो पैगंबर एक ही जवाब सबको दे रहे हैं। और उधर आइए मदीना, ठीक है उस वक्त तक मदीना मदीना नहीं कहलाता था क्योंकि अभी अल्लाह के रसूल ने हिजरत नहीं की, उसका नाम यसरिफ था। लेकिन मेरे अल्फाज मत पकड़ा करें, ये कोई किसी किस्म का एक क्रिटिसिज्म हुआ, जो पर्चा मेरे पास आ गया जो अभी मैं मस्कत में ये वाकया पूरा पढ़ा मौलाना, जबकि ये वाकया उस वक्त तो मदीना मदीना ही नहीं बना था। अरे इस तरह से अगर आप सवाल करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे तो कोई मजलिस कयामत तक की भी कंप्लीट नहीं होगी। तो जो आज का मदीना है उस वक्त उसमें दो कबीले थे, औस और खजरज, और ये दोनों कबीलों की एक हॉबी थी पास टाइम आपस में लड़ना। ये भी किसी हॉबी होती है बहुत से लोगों, कुछ लोग आपस में लड़ते हैं ये उनकी हॉबी, कुछ लोग दूसरे मोमिनीन को लड़वाते हैं ये उनकी हॉबी होती है। मदीने में दो कौमें थी, एक अहले किताब यहूदी, एक बुतपरस्त काफिर। अहले किताब लड़वाया करते थे, ये उनकी हॉबी थी, और बैठ के तमाशा देखते थे। डिवाइड एंड रूल खाली आज का उसूल नहीं है, चाहे जब से इंसान बना है उस वक्त से ये चीज चल रही। और ये जो बुतपरस्त थे ये आपस में लड़ा करते। भाई मेरे बुजुर्गों का ताल्लुक इंडिया के प्रोविंस यूपी से, हमारे यहां अवध में और लखनऊ में जो बड़े पैसे वाले थे नवाब, जिनको कुछ काम नहीं करना, वो मुर्गे लड़ाते थे, वो बटेरे लड़ाते थे। आज के साहिबान ईमान का स्टैंडर्ड हाई हो गया, वो उलमा को लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो खुलासा यह है कि अब ये मैंने कहा जरा मैं स्पाइसी बनाता था इस पूरे वाकये को, जो हमारी आजकल हो भी रही है बातें, कोई झूठ बात के जरिए नहीं। तो औस और खजरत जो दो कबीले लड़ते रहते थे, ये उनकी हॉबी थी, कभी खत्म ही नहीं होता। 40 साल 20 साल 15 साल एक जंग हुई, बहुत थक गए, छोटा सा एक ब्रेक आया, उसके बाद दोबारा ही लड़ाई शुरू हो गई। जनरेशन से ये सिलसिला चला रहा। और मक्का जो है, मक्का मक्के के अंदर कुरैश को अल्लाह ने एक एहतराम दिया है, इलाफ है कुरैश इलाफ एम रहत शिता एवत सैब, ये एक एहतराम था कुरैश का। तो मदीने के दो कबीलों ने मक्के के अंदर कुरैश से अपने कॉन्टेक्ट बनाए थे, यानी एक कबीले ने कुरैश के एक कबीले से एक पैक्ट किया था कि जब हम प्रॉब्लम में आ जाए हमारी हेल्प करना, औस ने, और खजरज दूसरे कबीले ने कुरैश के दूसरे हिस्से से। जब दुनिया दो तीन बड़ी सुपर पावर होती हैं तो बाकी सारे मुल्क कुछ इस कैंप में जाते हैं, कुछ इस कैंप में, कुछ इस कैंप। ये था 1400 साल पहले मक्के की हालत, कोई नई चीज दुनिया में नहीं आती है, वही चीजें रिपीट होके तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, वही चीजें। तो अब ये औस और खजरज जब पैगंबर के ऐलान रिसालत को 6 साल हो गए, मदीने वालों को कुछ पता ही नहीं, वो तो अपने काम में लगे हुए, यानी जंगों में, अपनी लड़ाई में लगे हुए। फुटबॉल का मैच हो रहा है तो यहां किसी को होश होता है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, कोई अपने काम में लगे। ये T20 का क्रिकेट का मैच होता है पाकिस्तान में, किसी को होश नहीं होता, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कहां आ गए, कहां को। अच्छा ये तो बात बहुत लंबी हो रही है। तो खुलासा यह है कि औस और खजरज खुद लड़ रहे हैं, मक्के में क्या हो रहा है इससे उनको इंटरेस्ट ही नहीं। और फिर औस कबीले को शिकस्त हो गई, कभी इनको शिकस्त कभी उनको, ये तो टर्न बाई टर्न होता। तो जैसा उनका एक तरीका, अपने एम्बेसडर को भेजा असद इब्ने ज़ुरारा, बहुत अहम नाम है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, पैगंबर के बहुत अजीम सहाबियों में से एक। कहा कि जाओ, यानी कोई ये भी कोई नई बात नहीं, यूजुअल, जाओ मक्के फुला कबीला हमारे साथ एक पैक्ट के अंदर है, जाओ जाके बताओ इस दफा हम डिफीट खा गए, हमें हेल्प चाहिए। और ये बस बिल्कुल सारा नॉर्मल वे से हो रहा है, कोई नई बात नहीं। दूसरे मुल्क से या दूसरे कौम से डायलॉग करने के लिए बड़े डिप्लोमेटिक आदमी को भेजा जाता है, बेवकूफ आदमी का काम नहीं, बहुत ही सेंसेबल, बहुत ही समझदार, बहुत ही विजडम वाला, बहुत ही वाइस पर्सनल। तो ये अपने कौम में बहुत अहम थे। ये गए वहां पे, और जो जिस कबीले से इनका एग्रीमेंट था उसके सरदार के घर में जाके उतरे। उसने खैर मेहमान नवाजी की, और उसके बाद ये पूछ लिया कि कैसे आए इस वक्त। कहा कि भाई भाई एज यूजुअल इस दफा जंग में हमको शिकस्त हो गई, हम हार गए, तो अब हम तुम्हारी हेल्प लेने आए, हमें वेपन्स चाहिए, हमें फंड्स चाहिए, जो भी तरीका हो। उसने कहा सॉरी, सो सॉरी, इस दफा हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। व्हाई? ये कोई एक 5 साल 10 साल नहीं, जनरेशन से, पीढ़ियों से ये सिलसिला चला रहा है, पुश्तों से। कहा कि नहीं नहीं, बात ये है कि खुद हम अपने एक लोकल प्रॉब्लम में फंस गए, और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास किसी और की हेल्प करने का ना टाइम है ना रिसोर्सेज है। अच्छा तुम्हारा लोकल प्रॉब्लम क्या? कहा हमारे दरमियान एक ऐसा नौजवान खड़ा हो गया जिसने एक बिल्कुल नया रिलीजन, अल्फाज मेरे हैं ये, रिलीजन वगैरह, एक नया नजरिया पेश करके पूरे कुरैश को डिवाइड कर दिया है। वालिदैन औलाद से अलग हो गए, भाई बहनों से अलग हो गए, शौहर बीवी में सेपरेशन आ गया, नेबर नेबर के खिलाफ हो गया, हर कबीले के दो हिस्से हो गए, कुछ उसको फॉलो कर रहे हैं कुछ इसके अगेंस्ट। तो अभी तो हम जब अपने घर में आग लगी हो तो आदमी दूसरे के घर में आग बुझाने नहीं जाता, अभी हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे, सो सॉरी कि इस वक्त हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। अच्छा, जो आदमी असद इब्ने ज़ुरारा है, यानी अपनी कौम का सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल या वाइज पर्सन, कोई आम सा आदमी होता तो वो तो गुस्से में आ जाता कि नहीं भाई, हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट है, तुम्हें तो कमिटमेंट इस कमिटमेंट वादा पूरा करना होगा। लेकिन ये बहुत समझदार आदमी, ऐसे ही आदमी को भेजा जाता, कहा हाँ ये बात ठीक है, जब तुम अपने प्रॉब्लम में हो तो पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर हमको बता देना या हेल्प कर देना, अब हम जा रहे हैं। यही होती है विजडम, यही होती है अकलमंदी की दलील, बात को समझना, सामने वाले के प्रॉब्लम को महसूस करना और उसके एतबार से अपना रिएक्शन शो करना, यह हर मोमिन को ऐसा होना चाहिए। इत्तकु फरासतुल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, हर मोमिन को ऐसा होना चाहिए। यहां तो हमारे एक चांद के मसले में हम अपने मर्जी को माफ करने को तैयार नहीं। खैर, तो ये तो बात बाद में होगी, अभी नहीं, अभी तो बात जल्दी से मुकम्मल करना। ठीक, तो बस अब हम जा रहे हैं, क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करें। और बस एक आखिरी चीज रह गई, कहा क्या चीज रह गई है, कहा कि अब तवाफ करूंगा। अरे वो जो सरदार कबीला था वो तो एकदम से घबरा गया कि जैसे फट गया हो कोई बॉम्ब, एक्सप्लोजन हो गया, अरे अरे क्या गजब कर रहे। कह रहे भाई क्या गजब कर रहे हैं, इब्राहिम के जमाने से काबा मक्के में है, हमेशा से हर दौर में, यानी इब्राहिम के बाद से लेकर रसूलुल्लाह तक उमरे का और हज का कंसेप्ट अरबों में रहा, वो नमाज भूल गए थे, वो रोजा भूल गए थे, वो बाकी चीजें भूल गए थे, हज बाकी था। अब ये अलग बात है कि हज ड्यू टू हज बाकी था, या ये कि चूंकि कुरैश के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स यही था, रेवेन्यू जेनरेट होता था इसलिए उन्होंने उसको बाकी रखा, लेकिन बहरहाल हज था। तो अब हज तो अब जैसे आज भी मोर और लेस हज का वही तरीका है जो बुतपरस्तों के जमाने में था, सिर्फ ये था कि कुरैश अराफात नहीं जाते थे, मुजदलिफा से हज स्टार्ट करते, एक अराफात आजकल, लेकिन बाकी मोर और लेस। तो कहा कि भाई तवाफ करने जा रहा हूं, इसमें क्या बात है। कहा कि नहीं नहीं, वो जो प्रॉब्लम क्रिएटर है हमारे दरमियान, कभी अमरे बिल मारूफ करने वाला प्रॉब्लम क्रिएटर कहलाता है कम्युनिटी, कभी नहीं अनिल मुनकर करने कहने वाला प्रॉब्लम क्रिएटर कहलाता है हमारी कम्युनिटी, ट्रुथ बताने वाला प्रॉब्लम क्रिएटर करार पाता है हमारी कम्युनिटी। हाँ ये अलग बात कि बाद लोगों का नहीं अनिल मुनकर का स्टाइल भी ऐसा होता, गुरूर वाला, ऐसा नहीं लगता कि वो किसी मरीज के साथ उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसको जलील कर रहे हैं। नहीं, अनिल मुनकर तो इस तरह करना है जैसे गुनाहगार एक मरीज है, बेचारा बीमार हो गया, हमें उसको ट्रीट करना, उसके स्टेजेस हैं, बात बहुत फैल रही है और ये इसका रिजल्ट कल निकलेगा। अभी बात कहा कि भाई तवाब करना है, अरे गजब हो गया वो जो कुरैश का सरदार, वो जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वो बैठते ही खाने काबा के सहन में, वहीं बैठता है, वहीं से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अगरचे फारसी का मिसरा तो किसी और सीक्वेंस में है, जो कुफर अस काबा बर खीजत कुजा मान मुसलमानी, अगर काबे से ही कुफर फैले तो इस्लाम कहां रहेगा, आजकल तो यही हो रहा है, लेकिन मजीद ये बातें बाद में होंगी। कुरैश ने ये रसूल के बारे में कहा, अरे ये प्रॉब्लम तो सारा क्रिएट खाने काबा से हो रहा, वो तो सहन में बैठता है अपने ग्रुप को लेके और हर आने जाने वाले जितने, अच्छा मक्के में जो विजिट करेगा खाने काबा तो आना उसके लिए लाजिम, जो भी मक्के में आएगा अरब का आदमी बल्कि अरब के बाहर का भी खाने काबा तो जाए, तो वहीं तो सब कुछ हमारे नौजवानों को गुमराह करता और मिसगाइड करता, वहां पे तुम जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं जाना वहां पे। लेकिन अब आइए एक टेक्निकल प्रॉब्लम, जो मैंने कहा कि जिसकी तफसील कल या परसों दो में से किसी एक मजलिस में आएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल, वो ये है कि हर एक को मालूम, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, कि मक्का एक ऐसा सिटी कि आप बगैर एहराम पहने मक्के में एंटर नहीं हो सकते। जो बाहर से आने वाले उनको एहराम पहन के फिर मक्के में दाखिले की शरई इजाजत। तो मक्के के अंदर रहने वाला है, रोज आना आता जाता है, उसकी बात छोड़िए, बाहर से आने वाला, हमें उमरा नहीं करना। मक्के में हमारी बेटी है, हम उसको विजिट करने जा रहे हैं, नहीं जा सकते। हमें उमरा नहीं करना, मक्के का अस्पताल बहुत अच्छा है, हमें वहां अपना ट्रीटमेंट कराना, नहीं ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। मक्के में हमें एक जॉब मिल रहा है टेम्परेरी, हम खाली काम के लिए जा रहे हैं, खाने काबा की तरफ भी नहीं जाएंगे। नो, मक्के में एंटर होना है तो या हज करें या उमरा यानी एहराम पहने। और एहराम एक ऐसा ड्रेस है कि आप पहन तो लेंगे, अपनी मर्जी से उसे उतार नहीं सकते। नमाज है, आपने नमाज शुरू की, नमाज आप तोड़ सकते। अगर वाजिब नमाज विदाउट रीजन तोड़ी गुना होगा, लेकिन नमाज टूट जाएगी। सुन्नत नमाज है तो बगैर गुना के। रोजा शुरू किया, आप रोजा तोड़ सकते हैं। रमजान का रोजा खा लिया, गुना मिला, लेकिन रोजा टूट गया। सुन्नत रोजा है तो अपनी खुशी से तोड़ सकते हैं। पाकिस्तान में सुन्नत रोजे लोग रखते ही इसलिए कि थोड़ी देर के बाद कोई पान खिला के, कोई सिगरेट पिला के, कोई चाय पिला के रोजा तोड़ेगा। बताइए कि एक घंटे के बाद रोजा टूटना है तो सवाब क्यों ना ले लो। जो एक बात बहुत मशहूर है ना कि सुन्नत रोजे में मोमिन ऑफर करे तो फौरन उसकी ऑफर कबूल करो। ये थोड़ा सा स्पाइसी मैंने बना दिया वाकये को। नहीं नहीं, वो टाइम नहीं है, मसला टाइम का। तो खुलासा ये है, क्या प्रॉब्लम ये टेक्निकल आ गया कि ये आदमी मक्के में एंटर हुआ, आया था ये हेल्प लेने के लिए, लेकिन बहरहाल मक्के में एंट्री बगैर एहराम के नहीं, एहराम पहन के आया। अब एहराम जो पहन लिया तो जब तक के उमरा कंप्लीट नहीं होगा एहराम नहीं उतर सकता। अब क्या करें, तो टेक्निकल प्रॉब्लम। यानी कुरैश इस्लाम से पहले आलम कुफर में भी यही मसला था। असद इब्ने जुरारा परेशान, उनका जो होस्ट है या जो उनका मेजबान है वो भी परेशान। आपको टेलीफोन वगैरह या ईमेल होता तो मक्के में एंटर होने से पहले बात कर लेता कि मक्के में आऊं कि ना आऊं, वो तो नॉर्मल तरीके से आ गए, कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं। अब आके फंस गए, एहराम पहने हुए हैं, एहराम के लिए तवाफ लाज़िम। अब ये बात ऐसी है कि इनका इनका जो मेजबान होस्ट है ना, वो भी ये नहीं कह रहा कि हां भाई खाबे मत जाओ, तोड़ दो अपना उमरा। उसको भी पता है उमरा नहीं टूट सकता, उसको पता है। आज बहुत से 12 इमामी शियों को यह चीज नहीं पता है, जो मैं कल या परसों इशारा करूंगा। तो खुलासा यह कि हां, कहा मामला सीरियस, उमरा भी करना, लेकिन वो जो प्रॉब्लम क्रिएटर है नऊजो बिल्ला, वो भी वहीं बैठा हुआ। अब क्या करे, कहा कि हां एक सोल्यूशन है, जो हमारे यहां एक प्रैक्टिस, वो कह रहा है कुरैश का सरदार मक्के वाला, जो हमारे यहां एक प्रैक्टिस है, जब ऐसा कोई केस आता है ना तो ये है कि हम उसको कॉटन देते हैं, ये रुई, ये अपने कानों में रख लो ताकि उसकी आवाज तुम्हारे कान में न जाए। उसका सारा मैजिक जो है ना वो आवाज के जरिए। कुरान मौजज़ाए खालिदा, दिल खींचते हैं कुरान की जानिब, कुरान कान में पड़े आदमी चेंज हो जाता है। कहा कि ये उसका मैजिक जो है ना आवाज, कान बंद कर लो, चुनाचे कॉटन रख लो ताकि उसकी आवाज ना जाए। वो पुराना जमाना था, काफिर से बेचारे, आज तो आके मोमिनीन से ट्रेनिंग ले। मोमिनीन कहते मौलाना पूरा घंटा मजलिस में बैठे, एक लफ्ज नहीं सुना। हमने कहा आपके कान तो खुले हुए। कहा कि हमको तरीके आते हैं, कान खुले भी हैं और कुछ नहीं सुनते। तो खैर असद इब्ने जुरारा को कॉटन दिया गया, कॉटन। कहा कि ये कान में रखो, कान बंद हो जाए फिर जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चले इस सोल्यूशन पे अमल किए। देखिए मक्के की इस्लाम की अर्ली हिस्ट्री क्या है ये भी आप समझते चलिए। चुनाचे अब ये गए, जाने के बाद तवाफ करना, तवाफ साउथ 7 राउंड होते हैं। अच्छा ये जमाना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद का, यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के टाइम पीरियड तक तवाफ में कोई राउंड और सर्किट नहीं थी। हर एक की मर्जी, जाओ खाने काबा के गिर्द घूमो, कोई 1, कोई 3, कोई 7, कोई 11, कोई 12, कोई 2, जितना तुम्हारी मर्जी राउंड लगाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक यूनिफॉर्म फिक्स कर दिए, 7, न 7 से कम न 7 से ज्यादा। तो खुलासा यह है कि 7 चक्कर लगाना। इन्होंने तवाफ शुरू किया, तवाफ हजरे असवद से शुरू किया। हजरे असवद के करीब ही अल्लाह के रसूल बैठते थे, लेकिन तारीखों में है कि जिस दिन यह वाकया पेश आया अल्लाह के रसूल हिजरे इस्माइल के करीब थे, वो जो एक यू शेप की छोटी सी दीवार उसके करीब थे। तो इन्होंने पहला राउंड तो लगाया जोश में। उसके बाद जब सेकेंड राउंड में गुजरे तो अब चूंकि क्राउन हो गया, जरा सा इत्मीनान हुआ कि बहुत ज्यादा रश नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब जो ये चल रहे हैं तो देखा कि हिजरे इस्माइल के करीब एक ग्रुप बैठा हुआ, अब ये तो तवाफ करते हुए आगे बढ़ रहे। जो इनका मेजबान है होस्ट, उसने अपना गुलाम साथ किया था हेल्प के लिए, पूछा ये कौन लोग बैठे थे, कहा यही तो वो आदमी है जिसके लिए मेरे आका ने कहा है। अब ये तो आगे बढ़ चुके थे, चले अब आए तीसरा राउंड। अच्छा ये वो प्रॉब्लम क्रिएटर है जिसकी वजह से मदीने में मेरी कौम को भी हेल्प नहीं मिल रही। चुनाके गुस्से के आलम में चेहरा उठाया और पैगंबर को देखा खास तौर पर। आप तवाफ में देखेंगे बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, आदमी उसको देखता है, फोकस में चेहरा नहीं होता है, नजर भी नहीं आता कौन सामने था। लेकिन अब तो खास पैगंबर के चेहरे को देखा, पैगंबर का चेहरा है ये, एक नूर रिसालत उस चेहरे से जाहिर हो रहा। जैसे ही पैगंबर के चेहरे को देखा, दिल में ख्याल आया ये फेस और चेहरा तो किसी झूठे आदमी को तो नहीं लगता, ये किसी मैजिशियन का तो नहीं लगता, ये किसी प्रॉब्लम क्रिएटर का तो नहीं लगता। अब ये एक बार निगाह डाली और एक चीज समझ में आ गई, ये जो पहली साइट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चेंज करने के लिए भी, यानी अल्लाह के लिए रास्ते पे लाने के लिए भी और शैतान के रास्ते पे लाने के लिए। क्यों ये कहा गया है कि नामहरम औरत, पहली निगाह शैतान का तीर होता। क्यों ये कहा गया है कि दज्जाल अपनी आर्मी में औरतों को आगे रखेगा, गर्ज ये पहली निगाह। और अगर वाकान आदमी अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला तो काबे पे निगाह पड़ती है, चेंज हो जाते हैं लोग। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा, चेहरा अली को देखते हैं इतनी बड़ी इबादत का सवाब मिलता है कि आदमी चेंज हो जाता है। रसूलुल्लाह के चेहरे को कहिए, मैं एक एक्सपीरियंस आदमी हूं, दुनिया भर के लोगों से डील करता हूं, ये किसी और शॉर्ट करता हूं, और शॉर्ट बहुत ज्यादा वक्त गुजर रहा। चुनाचे अब ये अब तो आगे बढ़ गए ना चेहरा देख के, फिर आए चौथा राउंड। चौथा राउंड था जब वहां से गुजरे तो ये खास जुमला है तारीख में कि देखा जो मजमा बैठा वो भी इतने अकीदत और एहतराम और अटेंटिव और रिस्पेक्ट के साथ बैठा कि आज तक किसी भी कौम के सरदार के सामने उसके चाहने वालों को इस तरह नहीं देखा। एक होता है कि सरदार की ताकत की वजह से लोग सामने बैठे, और एक है कि किसी की रिस्पेक्ट में आके सामने बैठा। फर्क होता है कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि खाली उसकी ताकत से डर रहे हैं। अब ये असाबे रसूल की हालत देखी और जरा यकीन बड़ा। पांचवा राउंड करीब से गुजरे, सोचा मैं अपनी कौम का सबसे इंटेलेक्चुअल और मेरी कौम ने सारी कौम में मेरा सिलेक्शन किया, मैं इतना बेवकूफ हूं कि किसी के दो जुमले सुन के उसके मैजिक में आ जाऊंगा? अगर मैं इतना बेवकूफ हूं तो मुझे ये पोस्ट संभालना ही नहीं चाहिए जहां दुश्मनों के साथ टेबल टॉक करना पड़ती है। कहा ये क्या नॉनसेंस है कि मैंने कान क्यों बंद किए? मैं इतना इनोसेंट और सिंपल आदमी होता तो मेरी कौम सालों से मुझे ये मिशन पे ना भेजती। देखिए अगर आदमी के पास अकल हो ना तो ये सारी चीज। सिक्स राउंड में जब वहां से गुजरे तो कानों से रुई निकाल ली, और अब जो कुरान की आयतें कानों में पड़ी, कौम का सबसे अकलमंद आदमी, बस एक बार जो इनका दिलो दिमाग चेंज हुआ कि ये ना तो मैजिक लग रहा, ना ये शायरी लग रही है, ना ये किसी इंसान का कलाम लग रहा, मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं लग रहा। सातवें राउंड में गुजरे तो पूरी तवज्जो से सुना, जैसे ही तवाफ मुकम्मल हुआ, नमाज तवाफ का कंसेप्ट अरबों में नहीं था, नमाज निकल चुकी थी, तवाफ था सही थी, नमाज नहीं, सीधा पैगंबर के पास आए और आने के बाद सामने बैठ के वो सवाल किया जो मैंने कहा कि बहुत से लोग करते थे। सवाल ये किया कि व्हाट्स इस्लाम, ऐ शख्स तेरा मैसेज है क्या, तू क्या इस जो ग्रुप को अपने सामने बिठाया है तूने, इन्हें क्या प्रीच कर रहा, जो पैगाम तू लेके आया वो पैगाम क्या? अब कुरान के कई सूरे नाजिल हो चुके लेकिन पैगंबर ने सिर्फ तीन आयतों की तिलावत की इस आदमी के लिए नहीं। यूजुअली जो रसूल से ये सवाल मक्के में करता कि व्हाट्स इस्लाम, या रसूल अल्लाह जो आप इस्लाम लाए ये है क्या, तीन आयतें सूरह अनआम कुरान करीम का सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 आयत नंबर 152 आयत नंबर 153 तीन आयतें जिसमें 10 बातें बताई गई। ज़ालिकुम वस्साकुम बे, ये तुम्हें एडवाइस दी जा रही है इस्लाम के बाद। आयत शुरू कहां से, फकुल तआलो अतलु मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम, आओ मैं तुम्हें बताऊं, अतलु मैं तिलावत करूं जो तुम्हारे रब ने तुम पे हराम किया। अल्लाह तुशरिकु बिही शैया व बिल वालिदैन एहसाना वला तक्तुलू औलादकुम मिन खशयति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याकुम ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم واوفوا الكيل والميزان. میں آیتوں کے درمیان کے حصے چھوڑ رہا ہوں. واوفوا بعہد اللہ. اب دیکھیے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا میں پیغام لے کے آیا ہوں. شرک نہ کرنا ٹاپ آف دا لسٹ. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پہلا اسلام کا پیمیسج. اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور کھلے بے حیائی کے گناہوں کے قریب نہ جانا. ولا تقرب الفواحش. ابھی سارے گناہوں سے بچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ولا تقرب الفواحش. فواحش اردو میں ہے بے حیائی بے شرمی. میں نے انگلش ٹرانسلیشن دیکھے تو زیادہ تر ٹرانسلیٹرز میں احمد علی صاحب نے بھی اور دوسروں نے بھی اس کا ترجمہ کیا شیم فل ایکٹس. اور ایک دو نے کہا جیسے پکتل کا ترجمہ وہ تھا کہ انڈیسنٹ ایکٹ. احمد علی یوسف علی یہ مشہور مشہور جو ٹرانسلیشن شیم فل ایکٹ انڈیسنٹ ایکٹ. اردو ہی میری زبان ہے. بے حیائی اور بے شرمی کے کام. ولا تقرب الفواحش. خبردار بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا. اس کے بعد کہا اور قتل نہ کرنا. قتل سیکوینس میں بعد میں آ رہا. یتیم کا مال نہ کھانا وہ اس کے بھی بعد آ رہا. بزنس کے اندر فراڈ نہ کرنا وہ اس کے بھی بعد آ رہا. اپنے وعدے پورے کرنا کمٹمنٹ اس کمٹمنٹ پہ اس کے بھی بعد آ رہا. لیکن بے حیائی کے کام بے حیائی کے کام جو میری تقریر کا جہاں پہ یہ اسٹیج آیا تھا کہ گناہ ایک ہوتے چھپ کے کیے جائیں ایک ہوتے کھلم کھلا کیے جائیں یہ بے حیائی کے گناہ کہلاتے. بے شرمی فواحش. گناہ کرو اور گناہ کو آخری زمانے کی سب سے بڑی پہچان یہی گناہ ہوں گے اور کھل کے ہوں گے. ورنہ کون سا ایسا گناہ آخری زمانے کا جو پہلے نہیں ہوتا. ایڈلٹری بھی ہوتا تھا آخری زمانے میں کھل کے ہوگا سڑکوں پہ ہوگا آنکھوں کے سامنے ہوگا. شرابیں پہلے بھی پی جاتی تھی چھپ کے پی جاتی تھی آخری زمانے میں کھل کے پی جائے گی. گانے پہلے بھی سنے جاتے تھے آدمی چھپ کے سنتا تھا. تو یہ بس وقت ہو گیا بہت زیادہ وقت ہو گیا تو میں بات کہیں پہ روک دیتا ہوں. جس کا جو تھوڑا سا تو میں نے پنچ لائن دے دی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آخری زمانہ. لیکن مزید اس کی وضاحت صحیح معنوں میں کل ہوگی. یہ چھوٹی سی اسٹوری اگرچہ میں نے اس کو بہت سمپل بنایا ہے. جو ڈاکٹر نے مجھے ڈائٹ بتائی نا ویسی میں نے اسٹوری بنائی ہے. وہ اسپائسی نہیں کیا اس کو لیکن ذہن میں رکھیے تو کل کی مجلس سمجھنا آسان. اور یہاں پہ صرف ایک بات کہہ دوں اور ربط مسائل اور بے حیائی سے روکنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ان میں سے ایک چیز ہے حجاب. حجاب کس لیے آتا؟ معاشرے کو بے حیائی سے اور بے شرمی سے روکا جائے. اور یہی وجہ کہ کربلا کے واقعے میں ہمیں کس کس انداز سے اور ڈیفرنٹ اینگل سے حجاب کا پیغام مل رہا. کربلا گناہوں کو روکنے والے جہاد کا نام کیسے ہمیں یہ میسج مل رہا کربلا کے واقعے کے اندر. دیکھیے 3 سال کی اگر ایک بچی ہے تو اس پہ حجاب واجب تو چھوڑے مستحب بھی نہیں ہے 3 سال کی بچی پر. لیکن کربلا میں ہم نے میسج دیا کہ کس طرح اہل بیت یا تھار کی خالی وہ بزرگ یا میچیور خواتین نہیں ننی ننی بچیوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ کتنا ہے. تاریخ اسلام کا سب سے ٹریجک پیج ہمارے سامنے آ گیا. ابو سفیان اور ہندہ کا پوتا تخت حکومت میں بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے اور شطرنج کھیل رہا اور محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے اس کے سامنے کھڑی کی گئیں. تاریخ اسلام کا اس سے زیادہ ٹریجک پیج کیا ہوگا کہ ہندہ کا پوتا ابو سفیان کا پوتا تخت حکومت پر بیٹھے اور محمد کی نواسیاں قیدی بنا کے اس طرح سامنے کھڑی کر دی جائے. اور اتنا یزید اپنے گناہوں میں لگا ہوا ہے شراب اور شطرنج میں کہ اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی جانب یا محمد کے گھرانے کی جانب توجہ کرے. ہاں ایک ننی سی بچی تھی جس کی وجہ سے یزید کی اٹینشن ادھر ڈرا ہو گئی. ایک چھوٹی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے ایک ہاتھ گلے پر ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. یہ ایسا سین تھا کہ یزید بھی ایک مرتبہ ادھر ایک مرتبہ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے لیکن بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا. अच्छा तू है हुसैन की सकीना, ये बता तेरा एक हाथ चेहरे पर क्यों है, एक हाथ गले पर क्यों है। कहा कि आई यजीद, मेरी बहनों और फूफियों के बाल बड़े हैं, बालों से चेहरा छुपा लिया है, मेरे तो बाल भी इतने बड़े नहीं हैं, तो मैंने हाथ से चेहरा छुपाया। ये 3 साल की नन्ही बच्ची हिजाब की अहमियत बता रही है कि मेरे तो बाल भी इतने बड़े नहीं, मैंने बालों से चेहरा छुपाया। अच्छा तेरा एक हाथ गले पर क्यों है, एक कभी खड़ी क्यों होती है, कभी बैठती क्यों है। मौला 19 रमजान को कूफे में आपको नींद नहीं आ रही थी, उम्मे कुलसूम ने पूछा बाबा आप बहुत बेचैन हैं, क्या तकलीफ ज्यादा है, तो आपने क्या कहा था, बेटी कुलसूम तेरा बाप तकलीफ की वजह से नहीं, इब्ने मुलजिम की कर्राह मेरे कान में आ रही है, ऐसा लग रहा है उसे रस्सी से बहुत मजबूती से बांधा गया है। हसन बेटा से कह दे इब्ने मुलजिम की रस्सी को ढीला किया जाए। अरे मौला इब्ने मुलजिम की रस्सी को ढीला करवाने वाले आका जरा दरबारे शाम में आइए। सकीना कहती है ऐ यजीद तेरी फौज ने एक रस्सी में 18 गले बांध दिए हैं, जब मैं खड़ी होती हूँ मेरा गला घुटने लगता है, मैं बैठ जाती हूँ हाय मेरा भैया सज्जाद, सज्जाद का गला घुटने लगता। खुदा बंदा अहले बैत अथार के इन मसाइब का वास्ता, जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में हैं, इनको दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा, दुनिया भर के साहिबान ईमान की हिफाजत फरमा। हमारे मरहूमीन खुसूसन जिन मरहूम को आज दफन किया गया, आलिन में बुलंद दर्जात अता फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, उलमा और मराजे का साया हमारे सरों पर सलामत फरमा। खुदा बंदा में सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा, पूरे इमाम में ताजील फरमा, मातम हुसैन।